हवाला पार्टी
जिंदाबाद,
हवाला पार्टी
जिंदाबाद।
ईमानदारी हटाओ
देश बचाओ,
ईमानदारी हटाओ
देश बचाओ।
भ्रष्टाचारी
नहीं छोड़ेंगे,
भ्रष्टाचारी
नहीं छोड़ेंगे।
अरे 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 भट्टी साहब, भट्टी साहब, भाई ये कौन सी पार्टी शुरू कर दी आपने?
आप सुन नहीं रहे? हवाला पार्टी
जिंदाबाद।
हवाला पार्टी? बड़ी अजीब पार्टी है।
अजीब नहीं जी, बड़ी पॉपुलर पार्टी है आजकल।
अच्छा, इसके मेंबर्स कौन है?
जिन जिन लोगों का नाम हवाला स्कैंडल में आया वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं।
इसका मतलब जिन बेचारों का नाम हवाला स्कैंडल में नहीं है वो आपके मेंबर नहीं बन सकते?
उदास होने की जरूरत नहीं है, स्कैंडल्स की यहाँ कमी है। हवाला नहीं तो शुगर स्कैंडल, शुगर नहीं तो बोफर्स।
अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप सिर्फ उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिन पर करप्शन का कोई ना कोई चार्ज है।
बिल्कुल जी, आपके पास कोई भी डिसऑनेस्टी का प्रूफ होना चाहिए, आप हमारे मेंबर।
सर, मैं आपकी पार्टी का मेंबर बनना चाहता हूँ।
आपके पास कोई बेईमानी का सबूत?
लो लो जनाब, शुगर स्कैंडल में मेरा भी हाथ था, अभी तक मेरे हाथ मीठे हैं, कहो तो टेस्ट कराऊं।
हाथ पीछे रखो यार, कोई अखबार की कटिंग या चार्जशीट की कॉपी है?
नहीं, दरअसल मेरा नाम अखबारों में नहीं छपा, लेकिन स्कीम सारी अपनी थी, आप मेरा यकीन कीजिए सर।
वैसे यकीन करें? बिना प्रूफ के हम यकीन नहीं कर सकते।
मतलब ईमानदार आदमी को आप अपनी पार्टी का टिकट नहीं देंगे?
क्या बात कर रहे हो साहब, ईमानदार आदमी तो अपने इलेक्शन के पोस्टर भी नहीं छपवा सकता।
पोस्टर तो खैर टीएन सेशन छपवा देंगे
ना, उनकी प्रिंटिंग प्रेस है।
मतलब वो ये रूल बनवा देंगे कि सस्ते पोस्टर छापे जाएं, जैसे पुराने पोस्टर्स को रीयूज किया जाए।
यानी कि जो फिल्में पिट जाती हैं उनके बचे हुए पोस्टर्स पर रीप्रिंटिंग कर ली जाए।
अब बिल्कुल।
क्या आइडिया जी, ऊपर लिखा होगा जानी दुश्मन, नीचे लिखा होगा खैराती लाल जी को अपना कीमती वोट दो। ऊपर लिखा होगा खूनी कौन, नीचे लिखा होगा आपके अपने उम्मीदवार श्याम लाल जी। ऊपर लिखा होगा शैतान का बेटा, नीचे लिखा होगा मुख्यमंत्री के बेटे को सफल बनाएं।
जो भी है भट्टी साहब, पोस्टर्स का खर्चा तो निकल ही आता है।
चलिए मान लिया पोस्टर छप गए, कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी गया,
फिर बाकी खर्चा क्या रह गया?
जब मेजोरिटी साबित करने के लिए एमपी खरीदने हैं तो पैसा कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। जब ऑपोजिशन में फूट डलवानी है तो उसके लिए करोड़ों चाहिए, कहां से आएंगे? हवाला।
भी डर नहीं, कानून का भी डर नहीं, जनता का भी डर नहीं, कानून का भी डर नहीं। भरते जाओ जेबों में धन काला, बोलो जय हवाला, बोलो जय हवाला, दिन दहाड़े हेरा फेरी, बोलो जय हवाला, बोलो जय हवाला, दिन दहाड़े हेरा फेरी, बोलो जय हवाला है। लिहाज नहीं भाई का लिहाज नहीं, बाप का लिहाज नहीं भाई का लिहाज नहीं, सबसे ही ऐठे जाओ माल सारा, बोलो जय हवाला, बोलो जय हवाला, दिन दहाड़े हेरा फेरी, बोलो जय हवाला, बोलो जय हवाला, दिन दहाड़े हेरा फेरी, बोलो जय हवाला है।
भट्टी साहब, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है?
हमारा सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है जी, अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम ईमानदारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे।
ईमानदारी भगाने के लिए आपने क्या सोचा है?
जितने भी ईमानदार अफसर इम्पोर्टेंट पोस्टों पर लगे हुए हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट महकमे हैं उनकी सरेआम नीलामी करवाई जाएगी,
फूड एंड सप्लाईज 5 करोड़, फूड एंड सप्लाईज 5 करोड़, बैक माय फूड एंड सप्लाईज 5 करोड़, फूड एंड
6 करोड़,
6 करोड़, शाबाश भाई साहब, आ गया ये साहबान, आ गया ये, खुल खुल के बोलिए
7 करोड़, 7 करोड़,
और कोई है, बैक माय फूड एंड सप्लाईज 7 करोड़ में जा रहा है साहबान, और बोलिए, और बोलिए, 7 करोड़, 7 करोड़, 1, 7 करोड़, 2, 7 करोड़, 3,
सर बड़ी खुशी की बात है कि आप महकमे के मंत्री बन गए।
थैंक यू।
लेकिन जिस हिसाब से आपने 7 करोड़ में फूड एंड सप्लाई का ठेका लिया है, क्या आपको यकीन है कि कुर्सी पर बैठकर आप 7 करोड़ बना लेंगे?
ऐसा है मैडम जी कि मैं तो कुर्सी पर बैठने से पहले ही 14 करोड़ कमा चुका हूँ।
वो कैसे?
ऐसा है कि मैंने 7 आदमियों से ये कहकर पहले ही 2-2 करोड़ पकड़ लिया था कि अगर मैं जीत गया तो आपके इंपोर्ट लाइसेंस पक्के।
लिखा जो नाम तेरा इस जैन की डायरी में, लाखों करोड़ों के हवाले बन गए, सौदा था जब हुआ तो डॉलर बन गए, इलेक्शन आई तो घोटाले बन गए। लिखा जो नाम तेरा जहां जाखड़ है वहां जाफर है, जहां आरिफ है वहां शुक्ला है, जहां अर्जुन और राय है वहां सिंधिया और शाही है। असल में कौन है दोषी न जाने क्या सच्चाई है। लिखा जो नाम तेरा इस जैन की डायरी में, लाखों करोड़ों के हवाले बन गए, सौदा था जब हुआ तो डॉलर बन गए, इलेक्शन आई तो घोटाले बन गए। लिखा जो नाम तेरा।
भट्टी साहब दफ्तरों में आप किस किस्म का सुधार करवाएंगे?
जी सरकारी दफ्तर में अगर किसी ने भी कोई काम करवाना होगा तो उसका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, नो रेड टेपिज्म।
वो कैसे?
दफ्तरों में चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक हर एक का रेट लिखकर लगाया जाएगा।
यानी कि अगर चपरासी से फाइल का पता करवाना हो तो 50 रुपए और चीफ सेक्रेटरी से फाइल पर साइन करवाना हो तो 50,000।
बाकी काम पर भी डिपेंड करता है ना जी, अगर स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए तो उसकी अलग फीस है, और अगर स्कूटर बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए तो अलग फीस है।
मतलब आपकी सरकार में हर चीज सिस्टमैटिक होगी,
सब कुछ जनता के सामने जी, वेरी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी।
यानी कि आपकी सरकार में कोई आदमी मेज के नीचे रिश्वत नहीं लेगा?
नहीं नहीं जी, मेज के नीचे तो बहुत आउटडेटेड फैशन है, बहुत ही बुरा लगता है।
मेज के ऊपर वेरी गुड मेज के नीचे
वेरी बैड
मेज के ऊपर
वेरी गुड
मेज के नीचे
वेरी बैड
रिश्वत खोरी
वेरी गुड
ईमानदारी
वेरी बैड
भोले भले मुखड़े दिल काले काले मेज के ऊपर
वेरी गुड
मेज के नीचे
वेरी बैड
रिश्वत खोरी
वेरी गुड
ईमानदारी
वेरी बैड
भोले भले मुखड़े दिल काले काले।
बट सर आपकी करप्शन पॉलिसी से दफ्तरों की एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ेगा?
एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, जब हर फाइल को रिश्वत के पहिए लग जाएंगे तो फाइलें खुद ब खुद भागेंगी।
हमारे यहाँ लोगों को आम शिकायत रहती है कि बाबू सीट पर नहीं बैठा, या अफसर छुट्टी पर है, आप कल आइए।
मैडम एक बार आप हमारी सरकार आने तो दीजिए, दफ्तरों में 100% अटेंडेंस हो जाएगी।
अरे अरे बिस्तर से उठ क्यों रहे हो, आपको तो 104 बुखार है।
अरे पता है भाई, लेकिन मेरा दफ्तर जाना बहुत जरूरी है।
देखो आपकी तबीयत ठीक नहीं और ऊपर से मौसम भी खराब है, आप छुट्टी भिजवा दो।
छुट्टी? भाई मैं आज छुट्टी नहीं ले सकता।
क्यों? आज आपको तनख्वाह मिलनी है।
अरे बेवकूफ, तनख्वाह के लिए कौन नौकरी कर रहा है, आज मुझे एक केस में 25,000 रुपया कमीशन मिलनी है।
ये कमाल का आइडिया है, अंधेरी हो या तूफान, तंदुरुस्त हो या बीमार, कोई आदमी दफ्तर मिस नहीं करेगा।
सवाल ही नहीं पैदा होता मैडम, दफ्तर के बाबू फ्लड के दिनों में भी तैर कर दफ्तर पहुँच जाया करेंगे, जुबान पर एक ही नारा होगा,
जिंदाबाद जिंदाबाद ए करप्शन जिंदाबाद, है करप्शन जिंदाबाद। कानून की जंजीरों से भी, कानून की जंजीरों से भी रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, है करप्शन जिंदाबाद, है करप्शन जिंदाबाद। हेरा फेरी जिसका मजहब पैरों तले है सारा जहां, जिसके दिल में करप्शन बसी वो नेता है आलीशान। ब्लैक मनी दिल खोल के खा घर अपना कर आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, है करप्शन जिंदाबाद, है करप्शन जिंदाबाद, है करप्शन जिंदाबाद।
भट्टी साहब, कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें करप्शन का ढंग ही नहीं आता, उन्हें रिश्वत लेनी या देनी ही नहीं आती।
ऐसे लोगों के लिए हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन। सारे देश में इसकी ब्रांचेस होंगी, वहाँ टीचर पढ़ाया करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पढ़ाया था कि एक अड़ियल किस्म के अफसर को रिश्वत कैसे दी जाती है। आज हम आपको हवाला के बारे में समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आप एक सवाल लिखिए। एक मिनिस्टर के पास 100 करोड़ का बजट है, 30% बजट उसके सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी खा गए, 5% क्लेरिकल स्टाफ के हाथ लगा। आपने ये कैलकुलेट करना है कि मिनिस्टर साहब को स्विस बैंक में जमा करवाने के लिए कितने डॉलर बचते हैं, जबकि डॉलर का रेट 35 रुपए दिया गया है।
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे नालायक स्टूडेंट्स तो होंगे ना जिन्हें करप्शन की समझ ही ना आए। ऐसे ईमानदार लोग कहाँ जाएंगे, सोसाइटी में उनकी जगह कहाँ होगी?
चिड़ियाघर में जी, जू में। लोग छुट्टी वाले दिन स्पेशली अपने बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने ले जाया करेंगे।
डैडी 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 डैडी, ये कौन सा जानवर है?
बेटा, ये एक ईमानदार आदमी है। ये एक ऐसा जीव है जो पहले जमाने में आम हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। बेटे,
डैडी, इसकी खासियत क्या है?
बेटा, ये अपनी तनख्वाह में गुजारा कर लेता था।
सिर्फ तनख्वाह में? डैडी, यू मीन नो ब्राइब्स, नो कमीशंस?
एग्जैक्टली। ये देखो, मैं इसे 500 रुपए का नोट दिखाता हूँ, अभी देखना। देखा तुमने, ये कैसे मुंह फेर लिया इसने।
ए भाई साहब, क्या कर रहे हो, जानवरों को तंग कर रहे हो?
अरे नहीं भाई, बच्चों को ईमानदार आदमी दिखा रहा हूँ, देखने दो।
आपको पता है जानवरों को तंग करने पर आपको 500 रुपए जुर्माना हो सकता है? निकालो 500 रुपए।
अरे छोड़ो यार, ये रखो 50 रुपए, जुर्माना हो सकता है।
ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाओ बच्चों को जू।
भट्टी साहब, कोई जमाना था लोग अपने अपने बच्चों को सच बोलने और ईमानदार बनने की शिक्षा देते थे।
अब ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पोलियो और स्मॉल पॉक्स इंजेक्शन के साथ साथ बच्चों को करप्शन के टीके भी लगवा देने चाहिए।
क्या आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है?
आप उसे करप्शन का इंजेक्शन लगवाना मत भूलिए।
अगर बड़ा होकर वो ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ा
तो उसे 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाएगा।
याद रखिए, ईमानदारी एक मानसिक रोग है, ईमानदार आदमी कभी भी पागल हो सकता है।
करप्शन का इंजेक्शन आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से लगवा सकते हैं।
बट किसी भी आदमी का कैरेक्टर उसके पालन पोषण पर बहुत ही डिपेंड करता है।
बिल्कुल जी,
जैसे पुराने जमाने में हम सुनते थे कि फलां लीडर की माताजी ने महापुरुषों की कहानियां सुना सुना कर उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भर दी।
आज भी माँ का या नानी का यही फर्ज है कि वो सोने से पहले अपने बच्चों को महान करप्ट लीडरों की कहानियां सुनाए।
मामा, माँ माँ, मुझे भी कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना।
बेटा, आज मैं तुझे तेरे नाना जी के बारे में बताती हूँ। वो एक पुलिस अफसर थे और अपने असूलों के बड़े पक्के थे। रिश्वत के मामले में तो वो किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते थे। एक बार तो उन्होंने अपने बेटे यानी कि तुम्हारे मामा जी से भी किसी काम के 100 रुपए पकड़ लिए थे।
मैं भी अपने नाना की तरह बनूंगा।
अब सो जा, कल रात को मैं बताऊंगी कि वो 1960 में किस तरह पैसे खिलाकर इनकम टैक्स की रेट से बच निकले थे।
तू गांधी बनेगा न तू नेहरू ही बनेगा, बेईमान की औलाद है बेईमान बनेगा। तू गांधी बनेगा न तू नेहरू ही बनेगा, बेईमान की औलाद है बेईमान बनेगा। शराफत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, बेईमानी मिटाए वो कदम तेरा नहीं है। रिश्वत नहीं जिसमें वो महकमा नहीं तेरा, बिन पैसे काम करना कर्म तेरा नहीं है। तू बेच के इस मुल्क को धनवान बनेगा, बेईमान की औलाद है बेईमान बनेगा। तू गांधी बनेगा न तू नेहरू ही बनेगा, बेईमान की औलाद है बेईमान बनेगा।
किसी करप्ट आदमी के घर में जब बच्चा पैदा होगा तो मोहल्ले की औरतें उसे भलाई देने के लिए जाया करेंगी।
हाय कितना क्रूक लगता है, शुक्ल तो देखो बिल्कुल चोर। बाप पे गया है ना, देखो देखो कैसे देख रहा है मेरे पर्स की तरफ। भगवान करे नजर ना लगे, बड़ा होकर बहुत बड़ा नेता बनेगा। अगर अपने देश के बच्चे ही करप्ट पैदा होने लग गए तो देश का फ्यूचर क्या होगा भट्टी साहब? पुराने जमाने में हम अपने लीडर्स के बारे में पढ़ते थे कि उनकी टिपिकल बायोग्राफी होती थी।
कैसी बायोग्राफी?
यही कि फ्लां लीडर का जन्म फ्लां जगह पर हुआ, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने घर में प्राप्त की, उनकी माता जी ने देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भर दी, वकालत करने के लिए विदेश चले गए, वापस आकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और अंग्रेजों के जुल्म हंसते हंसते झेल गए।
ओ भाई साहब, अब भी बायोग्राफी वैसी है कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर में प्राप्त की क्योंकि उन्हें चोरी की आदतों के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। उनके करप्ट नाना जी ने करप्शन के गुण उनमें कूट कूट के भर दिए। 18 साल की उम्र में वो स्विट्जरलैंड चले गए स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने, वापस आकर हवाला स्कैंडल में कूद पड़े, कई करोड़ों की जायदाद बनाई, CBI की रेड्स वो हंसते हंसते झेल गए।
कई लोग तो बॉर्न क्रूक होते हैं, जन्म से धोखेबाज करप्ट।
ऐसे लोगों को जमाने की नजर ना लगे।
आप ये नजर, जादू टोना, इविल स्पिरिट्स, उन पर विश्वास करते हैं?
होता है जी, कई बार कई लोग अच्छे भले करप्ट आदमी पर जादू टोना कर देते हैं और वो बेचारा ईमानदार आदमी बन जाता है।
बहन पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है, अच्छे भले थे, दफ्तर में किसी का काम बिना पैसे लिए नहीं करते थे। मुझे तो लगता है मिस्टर सिंगला ने उन्हें चाय में मिलाकर कुछ पिला दिया है।
फिर अब वो बहकी बहकी बातें करते हैं। एक दिन हमारे घर में पार्टी थी, सबके सामने कहते जो मजा तनख्वाह में है वो कमीशन में नहीं।
भाई तुझे तो बड़ी शर्म आई होगी।
आई वॉज फीलिंग सो बैड, सब हंस रहे थे।
पता है ऐसे कर तो उन्हें फकीर जसपाल भट्टी की दरगाह पर ले जा।
वो क्या करेंगे?
वो ईमानदारी का भूत 5 मिनट में उतार देंगे।
अच्छा,
उनकी दरगाह पर तो बड़े बड़े नेता आते हैं, मंत्री लोग हर घोटाले से पहले उनकी दरगाह पर माथा टेकने जाते हैं।
जसपाल भट्टी ओ जसपाल भट्टी, जसपाल भट्टी हाथ रखियो हमारे सर पे, चोरी से रिश्वत से करे हम माल अंदर, फटाफट जेब के अंदर तरीका 2 नंबर। जसपाल भट्टी ओ जसपाल भट्टी, बड़े बड़े नेता यहाँ नाक रगड़ते, ओ बड़े बड़े नेता यहाँ नाक रगड़ते, बड़े बड़े नेता यहाँ नाक रगड़ते, हमरा भी कर दे, हमरा भी कर दे, हमरा भी कर दे, बेड़ा पार तू ऐसे, चोरी से रिश्वत से करे हम माल अंदर, फटाफट जेब के अंदर, तरीका दो नंबर, जसपाल भट्टी, ओ जसपाल भट्टी।